एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है एकत्र ज्ञान गोष्ठी में। आज हम एक छोटी लेकिन अहम, बहुत असरदार किताब पर बात करने वाले हैं।
नमस्कार।
हाँ, ये किताब है टिमोथी स्नाइडर की ऑन टिरनी 20 लेसन्स फ्रॉम द 20th सेंचुरी। हिंदी में अगर कहें तो तानाशाही पर 20वीं सदी से 20 सबक।
नाम से लगता है विषय काफी गंभीर है, पर मुझे लगता है आज के समय में जब दुनिया भर में लोकतंत्र को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, ये किताब शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है।
बिल्कुल, ये हमें याद दिलाती है कि एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका क्या है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए।
हाँ, मतलब ये सिर्फ कोई इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह से नागरिकों के लिए गाइड है ना? सही का, एक एक्शन गाइड। स्नाइडर हमें दिखाते हैं कि देखो, इतिहास से ये सबक लो और आज लोकतंत्र की रक्षा में अपनी भूमिका निभाओ। तो चलिए इस अहम किताब पर जरा गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान लें, ये टिमोथी स्नाइडर हैं कौन और क्यों इनकी बात सुनना जरूरी है।
टिमोथी स्नाइडर, वो येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं और यूरोप, खासकर जो मध्य और पूर्वी यूरोप का इलाका है, और होलोकॉस्ट, इन विषयों के जाने माने एक्सपर्ट हैं।
हाँ, और उनकी खासियत ये है कि वो सिर्फ मतलब लाइब्रेरी में बैठकर लिखने वाले एकेडमिक नहीं हैं।
सही।
उन्होंने ब्लड लैंड्स और ब्लैक अर्थ जैसी बहुत महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। इनमें उन्होंने 20वीं सदी की जो भयानक त्रासदियां थीं, तानाशाही कैसे आई, उसके नतीजे क्या हुए, इसका बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है।
बिल्कुल, और वो उन जगहों पर गए हैं, आर्काइव्स में घंटों बिताए हैं, कई भाषाएं जानते हैं, और सिर्फ अतीत ही नहीं, आज की राजनीति पर भी उनकी पकड़ मजबूत है।
हाँ,
जैसे 1989 के बाद पूर्वी यूरोप में जो बदलाव आए, और फिर हाल के सालों में हंगरी या पोलैंड जैसे देशों में जिस तरह सत्तावादी रुझान दिखे हैं ना,
हाँ,
स्नाइडर ने उन्हें बहुत करीब से देखा है, समझा है।
तो उनके पास देखिए इतिहास की गहरी समझ भी है और मौजूदा राजनीतिक हालात का तजुर्बा भी, दोनों का एक गजब का मेल है। वो उन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं, वो छोटे छोटे सिग्नल पकड़ सकते हैं जिनसे पता चले कि भाई लोकतंत्र खतरे में आ सकता है।
हाँ, इसीलिए जब वो तानाशाही से बचने के सबक बताते हैं तो उनकी बात में वजन होता है, लोग ध्यान से सुनते हैं।
बिल्कुल, अनुभव और विश्लेषण दोनों की ताकत है।
तो अब आते हैं इस किताब पर, ऑन टिरनी। आखिर ये है किस बारे में, इसका असल मकसद क्या है?
जैसा हमने शुरू में कहा, ये किताब 20वीं सदी के यूरोप के जो कड़वे अनुभव रहे हैं, नाजीवाद, फासीवाद, साम्यवाद, उनसे सीख लेकर आज के नागरिकों के लिए प्रैक्टिकल सलाह देती है।
हाँ, ये लिखी तो आई थी 2016 के अमेरिकी चुनाव के ठीक बाद, लेकिन इसका जो संदेश है वो तो ग्लोबल है।
बिल्कुल ग्लोबल है, हर उस इंसान के लिए है जो लोकतंत्र को अहम मानता है और जो आजकल के राजनीतिक माहौल को लेकर थोड़ा चिंतित है।
किताब का जो मूल विचार है वो ये है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं जो बस चलती रहेगी, बहुत नाजुक होती है।
बहुत नाजुक, और ये अपने आप बचती नहीं है। इसे बचाने के लिए हम नागरिकों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है, अपनी भूमिका समझनी पड़ती है। स्नाइडर इसी पर जोर देते हैं कि तानाशाही एकदम से रातों रात नहीं आ जाती।
हाँ, ये पॉइंट बहुत अहम है।
हाँ, ये धीरे धीरे आती है, छोटे छोटे कदमों से, ऐसे कदम जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
जैसे
किस तरह के कदम?
कभी नियमों में जरा सा बदलाव, कभी भाषा का लहजा बदलना, कभी जो संस्थाएं हैं उनका कमजोर हो जाना। स्नाइडर का कहना है कि अगर हम इतिहास के इन पैटर्न्स को पहचानना सीख लेना तो हम इन शुरुआती कदमों का विरोध कर सकते हैं।
अच्छा, लोकतंत्र को बचाने का यही हमारा लक्ष्य और भूमिका है।
तो मतलब ये किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती बल्कि सल्यूशन भी देती है। ये 20 छोटे छोटे लेकिन बहुत दमदार सबकों में बंटी हुई है।
बिल्कुल, हर सबक इतिहास के किसी न किसी उदाहरण से जुड़ा है और आज के लिए बिल्कुल सीधी साधी प्रैक्टिकल सलाह देता है। जैसे आपने कहा था, एक तरह की नागरिक इमरजेंसी किट है ये।
इसमें भाषा, सच का क्या महत्व है, संस्थाएं, सिविल सोसाइटी, हमारी प्रोफेशनल नैतिकता, डर का माहौल, इन सब पहलुओं पर बात की गई है।
हाँ, ये हमें सिर्फ इतिहास का दर्शक बने रहने की बजाय उसका एक्टिव भागीदार बनने को कहती है। तो चलिए कुछ जो सबसे अहम सबक हैं उन पर जरा गहराई से बात करते हैं। 20 के 20 तो शायद ना हो पाए, पर कुछ खास जरूर देखेंगे।
जरूर, पहला सबक ही अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। पहले से आज्ञा का पालन न करें, डू नॉट ओबे इन एडवांस। स्नाइडर इसे अग्रिम आज्ञा पालन कहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर वो कहते हैं ये तानाशाही के आने का पहला और शायद सबसे अहम कदम होता है।
अग्रिम आज्ञा पालन
मतलब क्या हुआ इसका?
पहले से ही मान लेना।
हाँ बिल्कुल, मतलब ये कि जब कोई नई ज्यादा ताकतवर या कह लीजिए दमनकारी सत्ता आती है तो लोग अक्सर खुद ही अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि अरे ये सरकार क्या चाहेगी, और बिना किसी के कहे बिना किसी आदेश के खुद ही वैसा बर्ताव करने लगते हैं।
अच्छा, उदाहरण के तौर पर?
जैसे स्नाइडर बताते हैं कि 1933 में जर्मनी में जब नाजी आए, या 1938 में जब उन्होंने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, तो बहुत से आम लोगों ने, सरकारी अफसरों ने, यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों ने खुद ही यहूदियों से दूरी बना ली या नाजी नीतियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। किसी ने उनसे कहा नहीं था, पर उन्होंने सोचा कि शायद यही करना ठीक रहेगा।
ओहो, तो हम अनजाने में ही सत्ता को और मजबूत बना देते हैं।
बिल्कुल, स्नाइडर का सबक है, सत्ता को अपनी ताकत दिखाने दो, अपनी मंशा साफ करने दो, पहले से ही हार मत मानो, अपनी आज़ादी को इतनी आसानी से मत छोड़ो। ये बहुत ज़रूरी बात है।
ये वाकई सोचने वाली बात है, हम कई बार खुद ही अपनी जंजीरें बना लेते हैं। अच्छा, अगला सबक क्या है?
दूसरा सबक है संस्थाओं की रक्षा करें।
डिफेंड इंस्टीट्यूशंस।
जी,
मतलब जो हमारी संस्थाएं हैं, अदालतें, मीडिया, संसद, चुनाव आयोग वगैरह, ये लोकतंत्र के खंभे हैं।
और स्नाइडर चेतावनी देते हैं कि ये संस्थाएं देखिए खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती, इनकी हिफाजत हम नागरिकों को करनी होती है।
और जो सत्तावादी ताकतें होती हैं वो अक्सर इन्हीं को निशाना बनाती हैं, है ना?
बिल्कुल, धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती हैं। नाम वही रहता है, अदालत तो अदालत ही कहलाती है, पर उसका काम बदल जाता है, वो सत्ता का एक औजार बन जाती है। वाइमार जर्मनी में यही हुआ, चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट राज में यही हुआ।
तो नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका क्या है फिर?
स्नाइडर कहते हैं इन संस्थाओं के लिए खड़े हों, कोई एक संस्था चुने, चाहे वो स्वतंत्र मीडिया हो, कोई मानवाधिकार संगठन हो, कोई भी और उसका समर्थन करें, उसके लिए जो बन पड़े वो करें। और इसी से जुड़ा हुआ है तीसरा सबक, एक दलिया राज्य से सावधान रहें। बिवेयर द वन पार्टी स्टेट। इतिहास बताता है कि कई बार एक अच्छा भला मल्टी पार्टी लोकतंत्र देखते देखते एक पार्टी के शासन में बदल जाता है।
हाँ, और इसके कुछ संकेत होते हैं ना, जैसे जब कोई एक पार्टी चुनावी नियमों को अपने फायदे के लिए बदलने लगे।
हाँ, या फिर जब वो विपक्ष को देशद्रोही या बाहरी बताने लगे
और खुद को ही पूरे राष्ट्र का मतलब अकेला प्रतिनिधि मानने लगे,
तब समझ जाना चाहिए कि खतरे की घंटी बज रही है।
बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है अलग अलग विचारों का, पार्टियों का होना। स्नाइडर हंगरी और रूस जैसे देशों का उदाहरण देते हैं। सबक यह है कि हमें हर लेवल के चुनाव में, लोकल चुनाव में भी वोट देना चाहिए और मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाए रखना चाहिए। चाहे हमें कोई भी पार्टी पूरी तरह पसंद ना आए, एक पार्टी का दबदबा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, पांचवा सबक मुझे बहुत जरूरी लगता है, खासकर आज के माहौल में। पेशेवर नैतिकता याद रखें।
रिमेम्बर प्रोफेशनल एथिक्स। हाँ, ये बहुत अहम है। जरा सोचिए, कोई भी तानाशाही बिना पढ़े लिखे स्किल्ड लोगों की मदद के कैसे काम कर सकती है? उसे तो वकील भी चाहिए, जज भी, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी बाबू, टीचर, सब चाहिए।
और इतिहास में हमने देखा है कि कैसे कई बार इन्हीं पेशेवरों ने अपनी नैतिकता, अपने कोड ऑफ कंडक्ट को ताक पर रखकर सत्ता का साथ दिया।
बिल्कुल, नाजी जर्मनी में डॉक्टरों ने कैसे भयानक प्रयोग किए, वकीलों और जजों ने अन्याय को कानून का चोला पहना दिया। स्नाइडर कहते हैं कि अगर ये पेशेवर लोग, ये प्रोफेशनल्स, अपनी नैतिक जिम्मेदारी पर टिके रहें,
जैसे
वकील कानून के राज की रक्षा करें, डॉक्टर किसी जुल्म में शामिल होने से साफ मना कर दें, पत्रकार सच सामने लाएं, तो तानाशाही के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का एक बहुत ताकतवर तरीका है। अपनी पेशेवर भूमिका को ईमानदारी से निभाना भी एक तरह की देशभक्ति है।
बिल्कुल सही। अब आते हैं छठे सबक पर, अर्ध सैनिक बलों से सावधान रहें। बी वेरी ऑफ पैरामिलिट्रीज। इसका मतलब है जब नेता या पार्टियां अपनी प्राइवेट आर्मी टाइप बनाने लगें, या ऐसे हथियारबंद ग्रुप्स को बढ़ावा दें जो सिर्फ अपने नेता के प्रति वफादार हों, देश के कानून या संविधान के प्रति नहीं।
जैसे वो हिटलर के ब्राउन शर्ट्स थे या मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट्स।
हाँ बिल्कुल वही। ये लोग अक्सर यूनिफॉर्म पहने होते हैं, मार्च करते दिखते हैं, लेकिन ये सरकारी सेना या पुलिस नहीं होते, ये कानून के दायरे से बाहर काम करते हैं, अपने विरोधियों को डराते हैं, धमकाते हैं, हिंसा करते हैं।
स्नाइडर चेताते हैं कि जब ऐसे समूह दिखने लगें, तो समझिए लोकतंत्र के लिए ये बहुत बुरा संकेत है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है।
अब कुछ ऐसे सबक जो शायद व्यक्तिगत स्तर पर ज्यादा लागू होते हैं। 8वां सबक, अलग दिखें। ये सुनने में बड़ा आसान लगता कि हाँ भाई भीड़ से अलग चलो, पर करने में बहुत मुश्किल है।
हाँ, क्योंकि भीड़ के साथ चलना, जो सब कह रहे हैं वही दोहराना या चुपचाप बैठे रहना, ये ज्यादा सेफ लगता है ना।
बिल्कुल।
लेकिन स्नाइडर याद दिलाते हैं कि इतिहास में बदलाव तभी आया है जब कोई एक तो होता है जो पहली बार नहीं कहता है, जो लीक से हटके चलता है। रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट नहीं छोड़ी तो पूरा सिविल राइट्स मूवमेंट खड़ा हो गया।
सही बात है।
इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अकेले शुरुआत की। उनके एक छोटे से विरोध ने, उनकी हिम्मत ने दूसरों को हिम्मत दी। तो अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो शायद आपकी आवाज उठाना जरूरी है, भले ही आप उस वक्त अकेले महसूस कर रहे हो। ये भी नागरिक की एक अहम भूमिका है।
और इसी से जुड़ा है 9वां सबक, अपनी भाषा के प्रति दयालु बने। बी काइंड टू आर लैंग्वेज। ये मुझे बहुत गहरा सबक लगा। तानाशाह सिर्फ संस्थाओं पर कब्जा नहीं करते, वो हमारी सोच पर, हमारे सोचने के तरीके पर भी कब्जा करना चाहते हैं। और इसका एक बड़ा हथियार है भाषा को बिगाड़ना।
भाषा को बिगाड़ना? वो कैसे? मतलब शब्दों का गलत इस्तेमाल?
हाँ, वो भी, और साथ ही बहुत सीमित शब्दों का इस्तेमाल करना। आसान से नारे गढ़ देना जो सोचने समझने की जरूरत ही खत्म कर दें। शब्दों के जो गहरे मतलब होते हैं उन्हें छीन लेना।
अच्छा।
एक यहूदी विद्वान थे, विक्टर क्लैम्परर। उन्होंने नाजी जर्मनी में से बहुत करीब से देखा और लिखा कि कैसे धीरे धीरे भाषा जहरीली होती गई, कैसे सोच संकरी होती गई।
तो स्नाइडर का सुझाव क्या है?
वो कहते हैं अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं, सटीक शब्दों का इस्तेमाल करें, और जो नारे या जुमले चल रहे हैं उन्हें बिना सोचे समझे तोते की तरह दोहराने से बचें। अपनी सोच को भाषा के जरिए आजाद रखें।
ये तो आज के सोशल मीडिया के दौर में जहाँ हर चीज छोटे छोटे नारों में सिमट जाती है और भी ज्यादा जरूरी लगता है। और 10वां सबक तो शायद आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, सत्य में विश्वास करें, बिलीव इन ट्रूथ।
हाँ, और इस पर स्नाइडर का वो मशहूर कोट है, तथ्यों को छोड़ना आजादी को छोड़ना है, पोस्ट ट्रूथ प्री फासिज्म है।
बाप रे, प्री फाशीवाद। मतलब जब हम ये मानने लगते हैं कि सच जैसी कोई चीज होती ही नहीं, सब अपनी अपनी राय है, सब अपना अपना नैरेटिव है, तब क्या होता है?
तब स्नाइडर के अनुसार सत्ता उसके हाथ में चली जाती है जो सबसे बड़ा, सबसे लुभावना झूठ कर सकता है और उसे बार बार दोहरा सकता है।
हाँ, क्योंकि अगर सच का कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं बचा तो हम किसी चीज पे बहस कैसे करेंगे, सरकार को जवाबदेह कैसे ठहराएंगे, न्याय कैसे मांगेंगे?
सही, स्नाइडर कहते हैं सच की लड़ाई ही लोकतंत्र की लड़ाई है, इसलिए फैक्ट्स को अहमियत दें, भरोसेमंद न्यूज सोर्स ढूंढें, खुद थोड़ी रिसर्च करें। ये हमारी, मतलब हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
अगले दो सबक, 12वां और 13वां, थोड़े अलग से लगते हैं पर शायद जुड़े हुए हैं। नजरें मिलाएं, छोटी मोटी बातें करें, मेक आई कॉन्टैक्ट एंड स्मॉल टॉक, और शारीरिक राजनीति का अभ्यास करें, प्रैक्टिस कॉर्पोरियल पॉलिटिक्स। ये क्या चीज है?
ये असल में जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर सिविल सोसाइटी को मजबूत करने की बात है। स्नाइडर का मानना है कि तानाशाही अक्सर डर, शक और अकेलेपन के माहौल में ज्यादा पनपती है।
हाँ, जब लोग एक दूसरे से कट जाते हैं, अजनबी बन जाते हैं, तो वो ज्यादा कमजोर हो जाते हैं।
बिल्कुल। तो स्नाइडर कहते हैं छोटी छोटी चीजें करें, अपने पड़ोसियों से मिलें, दुकान पर किसी से मुस्कुरा के बात कर लें, बस स्टॉप पर खड़े अजनबी से आंखें मिलाएं, नमस्ते करें। इससे समाज में एक भरोसे का नेटवर्क बनता है।
और शारीरिक राजनीति का मतलब?
उसका मतलब है कि सिर्फ ऑनलाइन एक्टिविज्म, मतलब फेसबुक या ट्विटर पर पोस्ट लिख देना ही काफी नहीं है, घर से बाहर निकलना जरूरी है, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, सार्वजनिक जगहों पर जाना, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों या मीटिंगों में फिजिकली हिस्सा लेना। लोकतंत्र को असल दुनिया में जीना पड़ता है, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं। ये जमीनी जुड़ाव ही हमारी असली ताकत है।
ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, आगे और कौन से सबक हैं?
17वां सबक हमें फिर से भाषा पर ध्यान देने को कहता है। खतरनाक शब्दों पर ध्यान दें, लिसन फॉर डेंजरस वर्ड्स। कुछ खास शब्द होते हैं जिनके इस्तेमाल से हमें अलर्ट हो जाना चाहिए।
जैसे
अतिवादी, आतंकवादी। स्नाइडर कहते हैं कि कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल हर तरह के विरोध को, हर तरह की असहमति को दबाने के लिए किया जाता है, या फिर कानून और व्यवस्था का नारा जो अक्सर किसी खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए उछाला जाता है।
हाँ, या फिर बार बार राष्ट्रीय आपातकाल की बातें करना, जैसे कि देश बहुत बड़े खतरे में है।
बिल्कुल, ये शब्द अक्सर आने वाले खतरों के सिग्नल हो सकते हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए।
और 18वां सबक भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जब अकल्पनीय हो तो शांत रहें।
बी काम व्हेन द अनथिंकेबल अराइव्स। इसका क्या मतलब है? अकल्पनीय मतलब कोई बड़ा संकट?
हाँ, स्नाइडर बताते हैं कि इतिहास गवाह है, शासकों ने अक्सर किसी बड़ी घटना का, जैसे कोई आतंकी हमला हो गया या जर्मनी में वो राइकस्टाग फायर वाला कांड था, उसका इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने और लोगों की आज़ादी छीनने के लिए किया है।
अच्छा।
ऐसे वक्त में डर और घबराहट फैल जाती है, लोग सोचते हैं कि सुरक्षा के लिए कुछ भी चलेगा। स्नाइडर कहते हैं यही वो पल है जब सबसे ज्यादा शांत रहने और अपने सिद्धांतों पर, अपने मूल्यों पर टिके रहने की जरूरत है। डर में लिए गए फैसले अक्सर लोकतंत्र के लिए घातक होते हैं।
और आखिर के दो सबक भी बहुत मायने रखते हैं। 19वां, देशभक्त बने, बी ए पेट्रियट। यहाँ स्नाइडर देशभक्ति और राष्ट्रवाद में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं।
हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है आजकल।
वो कहते हैं राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट अक्सर मानता है कि मेरा देश ही सबसे महान है और दूसरों से नफरत करता है, उन्हें कमतर समझता है, जबकि देशभक्त पेट्रियट चाहता है कि उसका देश अपने सबसे ऊंचे आदर्शों जैसे न्याय, बराबरी, आजादी पर खरा उतरे।
मतलब देशभक्त अपने देश से प्यार करता है, इसीलिए वो उसकी कमियों की आलोचना भी करता है ताकि वो और बेहतर बन सके,
है ना? बिल्कुल, ये एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव सोच है। राष्ट्रवाद अक्सर अंधा और विध्वंसक हो सकता है।
और अंत में 20वां सबक, जितने साहसी हो सकते हैं बने।
बी एज करेजियस एज यू कैन।
ये एक सीधी सी अपील है। स्नाइडर मानते हैं कि सच बोलना, गलत का विरोध करना, इसमें जोखिम तो है, लोग डरते हैं।
हाँ, डरना स्वाभाविक है,
लेकिन वो कहते हैं कि हमें कोई हीरो बनने या शहीद होने की जरूरत नहीं है, बस जितना हम आमतौर पर करते हैं उससे जरा सा ज्यादा साहसी बने, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं।
क्योंकि अगर कोई भी थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं दिखाएगा तो आज़ादी कैसे बचेगी? ये हर नागरिक की भूमिका का एक अहम हिस्सा है, थोड़ा सा साहस।
तो ये थे कुछ प्रमुख सबक।
अब अगर हम इस पूरी किताब के निचोड़ की बात करें, जो मुख्य संदेश है वो क्या है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो श्रोताओं को खासतौर पर याद रखनी चाहिए?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे बड़ा संदेश है व्यक्तिगत जिम्मेदारी और भूमिका का,
इंडिविजुअल एजेंसी
का। ये के लोकतंत्र कोई मशीन नहीं है जो अपने आप चलती रहेगी।
हाँ, ये कोई ऑटो पायलट मोड पर नहीं चलता।
बिल्कुल, ये हम नागरिकों के रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों पर टिका है। हम चुप रहते हैं या बोलते हैं, हम साथ देते हैं या विरोध करते हैं, हम सच का साथ देते हैं या आंखें मूंद लेते हैं। इतिहास हम बनाते हैं, हमारी भूमिका एक्टिव रहने की है, पैसिव या उदासीन होने की नहीं।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा संदेश जो एक तरह की चेतावनी भी है, वो है तानाशाही का धीरे धीरे आना, ग्रेजुअलिज्म ऑफ टिरनी।
हाँ, ये कि लोकतंत्र एक झटके में खत्म नहीं होता, ये धीरे धीरे छोटे छोटे बदलावों से कमजोर होता है, और हमें उन शुरुआती संकेतों के प्रति, उन छोटे बदलावों के प्रति जागरूक रहना होगा।
हर छोटे लगने वाले बदलाव पर सवाल पूछना होगा, ये हमारी सतर्क रहने की भूमिका है।
तीसरा, जो आज के पोस्ट ट्रूथ जमाने में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, वो है सत्य और लोकतंत्र का अटूट रिश्ता।
स्नाइडर बार बार ही याद दिलाते हैं कि पोस्ट ट्रूथ यानी सच की परवाह न करने वाली राजनीति असल में तानाशाही का रास्ता खोलती है।
हाँ, क्योंकि अगर हम तथ्यों और सच्चाई को ही नकार देंगे तो फिर बहस का, जवाबदेही का, न्याय का आधार ही क्या बचेगा।
तो आज के फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के जमाने में सच को खोजना और उसका सम्मान करना, यह हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है।
चौथा अहम पॉइंट है नागरिक समाज और शारीरिक राजनीति की ताकत, यानी सिविल सोसाइटी एंड कॉर्पोरियल पॉलिटिक्स।
मतलब सिर्फ सरकारी संस्थाएं ही काफी नहीं है।
हाँ, जो स्वतंत्र मीडिया है, मानवाधिकार संगठन है, मजदूर यूनियन है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, यहाँ तक कि हमारे आस पड़ोस के रिश्ते, हमारी कम्युनिटीज,
ये सब लोकतंत्र के जड़े हैं। इन्हें मजबूत रखना जरूरी है, और जैसा स्नाइडर कहते हैं, हमें सिर्फ ऑनलाइन दुनिया में नहीं बल्कि असल दुनिया में लोगों के साथ मिलकर फिजिकली एक्टिव होना होगा। भारत में भी हम देखते हैं जो मोहल्ला कमेटियां होती हैं या RWA होती हैं या छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह, ये सब इसी सिविल सोसाइटी की ताकत के उदाहरण है।
बिल्कुल। और पांचवा, देशभक्ति बनाम राष्ट्रवाद, पेट्रियटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म का जो फर्क है उसे साफ तौर पर समझना।
हाँ, कि देशभक्त अपने देश को बेहतर बनाना चाहता है, उसके आदर्शों के लिए खड़ा होता है, वो जरूरत पड़ने पे सवाल भी पूछता है, आलोचना भी करता है।
जबकि राष्ट्रवाद अक्सर अंधा होता है, वो हम और वो में भेद करता है और नफरत या श्रेष्ठता के भाव पर आधारित हो सकता है। हमें सच्चे देशभक्त बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, न कि अंध राष्ट्रवादी।
इस किताब में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो सच में सोचने पे मजबूर कर देती हैं, जो दिमाग में बैठ जाती हैं। कुछ ऐसी यादगार बातें अगर हम साझा करें।
हाँ जरूर, जैसे वो अग्रिम आज्ञा पालन पर स्नाइडर लिखते हैं, तानाशाही की ज्यादातर ताकत उसे स्वेच्छा से दी जाती है। लोग खुद ही अनुमान लगा लेते हैं कि दमनकारी सरकार क्या चाहेगी और फिर बिना मांगे ही वैसा करने लगते हैं। ये हमें आईना दिखाता है कि कैसे हम अनजाने में ही जुल्म का रास्ता आसान कर देते हैं।
और सत्य के महत्व पर ये बात कितनी गहरी है। तथ्यों को छोड़ना स्वतंत्रता को छोड़ना है। अगर कुछ भी सच नहीं है तो कोई भी सत्ता की आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि आलोचना का कोई आधार ही नहीं बचता। ये बताता है कि सच की जमीन के बिना आजादी खड़ी ही नहीं हो सकती।
देशभक्ति और राष्ट्रवाद का फर्क भी उन्होंने कितने साफ शब्दों में बताया है। देशभक्त सार्वभौमिक मूल्यों को मानता है, राष्ट्रवादी सिर्फ स्थानीय मूल्यों को, और दूसरों को बाहर रखने के लिए परंपरा का इस्तेमाल करता है। ये हमें हेल्दी राष्ट्रप्रेम और खतरनाक अंधराष्ट्रवाद के बीच की महीन रेखा पहचानने में मदद करता है।
और अंत में वो साहस वाली बात, साहसी बनो। अगर हम में से कोई भी स्वतंत्रता के लिए मरने को तैयार नहीं है तो हम सब तानाशाही के तहत मरेंगे। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन ये एक सीधी चेतावनी है कि आज़ादी की रक्षा के लिए कभी कभी जोखिम उठाना जरूरी होता है। हमारी भूमिका सिर्फ आराम से बैठने की नहीं है।
ये सब बातें बहुत गहरी हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम इंसान के तौर पर इन्हें लागू कैसे करें, क्या कर सकते हैं हम?
हाँ, और अच्छी बात यह है कि स्नाइडर बहुत प्रैक्टिकल, करने लायक सुझाव देते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हम कुछ चीजें तो कर ही सकते हैं।
जैसे?
जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस पर ध्यान दें। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भरोसा ना करें, अलग अलग न्यूज सोर्स देखें, थोड़ी फैक्ट चेकिंग की आदत डालें।
अपनी भाषा पर ध्यान दें, वो घिसे पिटे नारे या भड़काऊ जुमले दोहराने से बचें, सोच समझकर बोलें, लिखें।
हाँ, और वो जो स्नाइडर ने कहा, लोगों से मिलें, अजनबियों से भी नजरें मिलाएं, नमस्ते करें, समाज में वो जो एक जुड़ाव है उसे बनाए रखें।
और अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी का भी थोड़ा ध्यान रखें, हर चीज दुनिया को बताना जरूरी नहीं।
बिल्कुल। और सामुदायिक स्तर पर
हम अपनी जो लोकल संस्थाएं हैं उनमें थोड़ी रुचि ले सकते हैं, चाहे स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, या मोहल्ले की कोई समस्या हो, या पब्लिक लाइब्रेरी हो, इनका समर्थन करें, इनमें भाग लें।
और सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लें, कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, कोई चर्चा है, उसमें शामिल हों, वो जिसे स्नाइडर शारीरिक राजनीति कहते हैं।
अपने आस पड़ोस के लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, एक दूसरे पर भरोसा करें। ये जो सामाजिक ताना बाना है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है लोकतंत्र के लिए।
और हाँ, पेशेवर स्तर पर भी हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, जैसा हमने पहले भी बात की।
हाँ, कि जो भी हमारा पेशा है, डॉक्टर, वकील, टीचर, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी, कोई भी, उसकी अपनी एक नैतिकता होती है, एक कोड ऑफ एथिक्स होता है,
उस पर टिके रहें। अगर कोई गलत काम करने को कहा जाए, कोई ऐसा आदेश आए जो आपके जमीर के, आपके सिद्धांतों के खिलाफ हो, तो ना कहने की हिम्मत जुटाएं।
ये आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं, पर ये प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब प्रोफेशनल लोग अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं तो गलत काम करना मुश्किल हो जाता है।
तो इस सारी बातचीत के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज जो आपके जहन में सबसे ज्यादा रह गई हो, सबसे बड़ी सीख, वो क्या है?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि लोकतंत्र एक सतत प्रक्रिया है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हम पहुंच गए और बस काम खत्म। नहीं, ये एक बगीचे की तरह है जिसे रोज पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है।
सही कहा।
और ये काम हम सब नागरिकों का है। हमारे रोज के छोटे छोटे कामों से, हमारे छोटे छोटे फैसलों से, हमारी भूमिका सिर्फ वोट डालने तक खत्म नहीं हो जाती, बल्कि एक जागरूक और एक्टिव नागरिक बने रहने की है। उदासीनता, मतलब इनडिफरेंस, ही शायद सबसे बड़ा खतरा है।
जाते हैं।
हाँ, ये पैटर्न रिकॉग्निशन वाली बात बहुत अहम है।
बिल्कुल। और अगर हम उन पैटर्न को पहचानना सीख लें तो हम असहाय नहीं है, हमारे पास तरीके हैं विरोध करने के, लोकतंत्र को बचाने के। व्यक्तिगत स्तर पर भी हमारी भूमिका बहुत अहम है। ये हमें लाचार महसूस करने के बजाय एक तरह की ताकत देता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी बदलाव ला सकते हैं। शायद यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, अपनी भूमिका को समझकर लोकतंत्र के प्रहरी बनना।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब। और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।